शांति। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को जो पहली लाइन कही वो कौन सी थी? मीठे बच्चों को, मीठे बच्चे इस समय भारत को श्रीमत की दरकार है, है ना? क्योंकि श्रीमत से ही क्या होगा, भारत जो कौड़ी तुल्य बन गया है वो हीरे जैसा बनेगा और सबकी गति सदगति होगी। तो जब ये कहते हैं हम कि भारत को श्रीमत की दरकार है, इसका मतलब भारत में रहने वालों को, है ना? और जैसे कहा कि भारत कौड़ी तुल्य बन गया है उसको हीरा बनाना है, मतलब भारत में जो रहने वाले हैं वो कौड़ी तुल्य बन गए हैं और उन्हें हीरे जैसा बनाना है। तो जब भारत को कहा, मतलब भारत में रहने वालों को, या दूसरे शब्दों में कहें मनुष्यों को, श्रीमत की दरकार किसको है? मनुष्यों को है। मनुष्य इस समय कौड़ी तुल्य बन गए हैं और उन्हीं मनुष्यों को अब क्या बनाना है? हीरे जैसा बनाना है। तो हीरे की विशेषता क्या होती है? क्योंकि हीरे जैसा बनाना है ना, तो एक तो हीरा बहुत मूल्यवान होता है, जबकि कौड़ी क्या होती है? उसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन फिर हीरा जितना ही मूल्यवान होता है, आजकल के युग में जहां सब कुछ नकली सामान का भी बहुत उत्पादन होता है, तो फिर ये भी पहचानना जरूरी हो जाता है कि अगर मेरे सामने दो रतन ला के रख दिए जाए और कोई कहे कि इसमें से एक तो सच्चा हीरा है और एक तो साधारण कांच का टुकड़ा है, पर बाहरी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, उसकी जो दिखावट है उसमें कोई अंतर नहीं है, हाँ, असली हीरा गिरे तो टूटता नहीं और नकली है तो टूटेगा। और भी कोई पहचान? और भी कोई पहचान? क्योंकि हमें असली हीरा बनना है, हाँ, हीरा, असली हीरा चमकेगा और नकली हीरा नहीं चमकेगा। लेकिन कहा ना, आज बनावटी चीजें इतनी बन रही है, क्या बोलते हैं उसको, आभूषण आते हैं ना, एक कुछ अलग नाम देते उस आभूषणों को, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल, और एक दूसरा नाम इमिटेशन, जो सच्चे से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ज्यादा चमक होती है उसमें, हाँ, सच्चे को भी फीका कर देते हैं। ऐसे तो आजकल आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं कि आपको लगेगा कि यही सच्चा है। तो क्योंकि हमें हीरा बनना है, क्योंकि कहा ना, भारत को हीरे जैसा बनाना, माना भारत में रहने वाले मनुष्य, मतलब पूरी ही धरती पर, क्योंकि भारत माना सिर्फ आज का जो भारत है वो भारत नहीं है। जैसे एक हॉस्पिटल, कोई एक बिल्डिंग को हॉस्पिटल थोड़े बोलेंगे, उस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए वैरायटी साधन है, सब मिला के तो हॉस्पिटल बनता है ना। ऐसे ही ये सारा ही भूखंड मनुष्यों से ही तो भरा पड़ा है। लेकिन वो थोड़ा सा एक भूखंड जिस पर भारत पधारते हैं, तो उस भूखंड को नाम वर्तमान में भारत मिला है, तो फिर बाबा कहते हैं भारत को। वास्तव में पूरी ही धरती की बात है। तो सारी मानव जाति जो आज कौड़ी तुल्य बन गई है, उसे हीरा जैसे बनाना है, सच्चा हीरा। तो पहले तो परख होनी चाहिए कि सच्चा हीरा कहते किसे हैं। हाँ, बहुत सुंदर इसकी पहचान एक कहानी के माध्यम से सुनी होगी आप सभी ने, लेकिन यहाँ पर उसको फिर से आपके सामने रख दूं ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। एक व्यक्ति था जिसके पास ये दो रत्न थे, जिसमें से एक तो सच्चा हीरा था और एक था साधारण कांच का टुकड़ा, पर उनका फिजिकल अपीयरेंस बाहर से उनमें जो दिखाई देते थे दोनों एक जैसे दिखाई देते थे। तो अपने ये दो रत्न लेके वो अलग अलग राज्यों में जाता था, राजाओं के पास, और उनकी दरबार में जाके कहता था कि आपकी दरबार में कोई भी एक व्यक्ति इन दो रत्नों में से किसी जो सचमुच का हीरा है उसकी परख कर लेगा तो ये हीरा मैं आपके राजकोष में भेंट कर दूंगा, और अगर नहीं परख पाया तो आपको मुझे बदले में आपके राजकोष में से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी होगी। और राजा उस शर्त को मानकर दरबारियों से कहता कि परखो, लेकिन दरबारी अच्छे से अच्छे दरबारी भी उसको परखने में फेल हो जाते, और ये बदले में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके अगले राज्य में जाता, वहां भी ऐसे ही घटना घटती, फिर 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और कमाई कर लेता। ऐसे करते करते अनेक राज्यों से वो गुजरा, अभी तक उसे कोई पारखी नहीं मिला। फिर ऐसे करते करते जहां पहुंचा तब तक सर्दियों के दिन आ गए थे, तो एक राजा अपनी राज्य दरबार, बहुत बड़ा राजा नहीं था वो, छोटा सा राजा था, छोटा सा राज्य था, तो सर्दियों के दिन होने के कारण अपना दरबार खुले में बाहर आंगन में लगाकर बैठा था ताकि इस सर्दी में धूप भी पड़ेगी तो अच्छा लगेगा सबको और कामकाज भी इजीली निपटेगा। तो चूंकि खुले में बैठा था, ये वहां पहुंच गया और फिर वही वाली बात रख दी कि मेरे पास दो रत्न है, आपके दरबारी अगर इसको परख लेंगे तो हीरा आपका, और नहीं तो मुझे उसके बदले में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने शर्त मान ली और सभी से कह दिया, यहाँ तक कि विद्वानों को भी बुला डाला अपने राज्य के कि आप परख करो। लेकिन आखिर यहाँ पर भी परिणाम फेल ही रहा, कोई परख नहीं सका। और चूंकि शर्त थी कि बदले में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो राजा ने जब देखा कि मेरे दरबार में से कोई भी व्यक्ति इसको परखने में सफल नहीं हुआ है, तो शर्त यह थी कि अपने खजाने में से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। तो उसने अपने खजानची को आदेश दिया कि जाओ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। तो इतने में उसी सभा में, क्योंकि सिर्फ दरबारी नहीं बैठे थे, आम व्यक्ति भी बैठे हुए थे, तो उस आम व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो जन्म का अंधा था, वो वहां से उठकर कहते हैं, राजन ठहरो, खजानची को खजाने में से स्वर्ण मुद्राएं लाने का आदेश देने से पहले मुझे एक अवसर दिया जाए कि मैं इनको परखूं। राजा ने कहा ठीक है। और ये अंधा, क्योंकि रतन एक बीच वाले स्थान में रख दिए गए थे, ये वहां पर गया और बारी बारी से दोनों को छूता है, क्योंकि आंखें तो है नहीं ना उसको, बारी बारी से छूता है, और जब कंफर्मेशन उसके अंदर महसूस होता है उसको, वो उठाता है उसमें से एक और कहता है, राजन ये असली हीरा है और ये साधारण सा कांच का टुकड़ा है और इस समय परख सही निकले। बहुत जोर का जय घोष हुआ। वो व्यक्ति जो इतने समय से हर बार विजेता बन गया था, आ रहा था, आज वो हार गया, लेकिन उसको खुशी हुई फिर भी कि कोई तो है कि जिसके पास पहचान है। तो उसने पूछा कि मुझे खुशी है कि आपने पहचान लिया, लेकिन क्योंकि वो खुद भी जानता था और उसकी पहचान अलग थी, जैसे आप में से उत्तर दिया कि फेंकेंगे तो नकली होगा तो टूट जाएगा, असली होगा तो नहीं, तो उसकी वो पहचान थी, लेकिन इसने वो भी नहीं किया था, इसलिए उसको मन में जिज्ञासा हुई कि इसने कौन सी मेथड से इसको फाइंड आउट किया, पता किया कि असली हीरा कौन सा है। उसने कहा कि हम सभी खुले में बैठे हैं, ऊपर भगवान सूर्य भास्कर जी चमक रहे हैं, उसका प्रकाश इन दोनों रत्नों पर पड़ रहा है, गर्मी इन रत्नों पर पड़ रही है। जो असली हीरा होता है वो गर्मी खाकर भी ठंडा ही बना रहता है, गर्म नहीं होता है, जबकि जो साधारण कांच का टुकड़ा होता है उसको अगर गर्मी मिले तो गर्म हो जाता है। तो मैंने स्पर्श से ही तो महसूस करना होता है गर्म ठंडा, मेरे पास तो आंख वैसे ही नहीं है, पर इसके लिए आंख की जरूरत भी नहीं थी, मुझे तो स्पर्श की जरूरत थी और मैंने स्पर्श करके अनुभव कर लिया और मुझे पता चल गया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। अब हम अपने आप को चेक करें कि बाबा जब हमें असली हीरा बनाने आया है कौड़ी से, हम कौड़ी थे, लेकिन जैसे ही बाबा के पास आए, बाबा की हमें श्रीमत मिलने लगी और धीरे धीरे वो श्रीमत को हमने यथाशक्ति अपने जीवन में उतारना आरंभ किया है, लेकिन क्या अब तक भी हम सच्चे हीरे बन पाए हैं या अभी भी बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है? तो उसका आधार क्या होगा कि हम कितने हद तक हीरे बने हैं? उसका आधार ये होगा कि अगर हमें हमारी जीवन की सफलताओं पर हमारा सर सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि सफलताएं प्राप्त करने पर हम अहम से भर जाते हैं, या अगर जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो एकदम से टूट जाते हैं, गरम हो जाते हैं, है ना? दुख के नाम पर, चिंता के नाम पर इंसान क्या होता है अंदर में? गरम ही तो हो रहा होता है ना? अर्थात कई गुस्सा आता है परिस्थितियों में, कभी कभी चिंता होती है, कभी दुख होता है, कभी बदले की भावना आती है, कुछ परिस्थितियां आती है तो हमको लगता है इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण ऐसा हुआ है, और उसके जिसके कारण हुआ है उसके प्रति उंगली जाती है और उसके कारण से हम गर्म हो रहे होते हैं, ऐसा होता है ना? तो हम अपने आप को चेक करें, हम किस हद तक आज तक इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारी गर्मी जाती नहीं है, हम अपनी ठंडक को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमारी ठंडक हमारी ओरिजिनल है, मैं आत्मा। पहले दिन क्या लेसन मिलता है हमें? तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। और फिर आत्मा के साथ गुण बताए जाते हैं। आत्मा कैसी है? शांत है, शीतल है, क्योंकि आत्मा ज्योति स्वरूप है ना? तो वो ज्योति, जैसे देखो आसमान में सूरज चमक रहा है, सूरज भी एक ज्योति है, लेकिन उस ज्योति में गर्मी है। गर्मी है या नहीं है? आसमान में रात को चंद्रमा भी चमकता है, वो भी ज्योति है, लेकिन उसकी ज्योति में क्या है? शीतलता है। ऐसे आत्मा की ज्योति कैसी है? क्या बताया गया था? शीतल है, हम शीतल हैं, हमारी आत्मा की ज्योति। और उसके साथ साथ बहुत सारे गुण बताए गए, शांत, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, खुशी, आनंद, ये सब भी हमें बताया गया। तो हम अपने आप को चेक करें, हमारे जीवन में जब कोई बात आती है तो हमारा जो असली स्वरूप हमें बताया गया है, हम उसमें स्थित रह पाते हैं या उसका अपोजिट हो जाते हैं। वो हमारे जीवन में सफलताएं भी हो सकती है, वो हमारे जीवन में आने वाली विफलताएं भी हो सकती है। सफलताओं के नाम पर, नाम मानसान के नाम पर अहम से भर जाते हैं, विफलताओं के नाम पर दुख से भर जाते हैं। तो न तो अहम मेरा असली स्वभाव है, न तो दुख मेरा असली स्वभाव है। तो मैं अपने असली स्वभाव से हट गई, तो इसको मैं कहूंगी कि मैं सच्चा हीरा बनी हूं, सच्चा हीरा बनी हूं मैं? नहीं बनी हूं। अभी भी मुझे श्रीमत को घोट घोट कर अपने जीवन में उतारने की बहुत आवश्यकता है। सच्चा हीरा सिर्फ स्पर्श ही तो किया था, उसने आंखों से देखा तक नहीं था, गिराया भी नहीं था कि गिरा और टूटा, हाथ आंखों से देखा भी नहीं कि चलो मैं पारखी हूं कि मुझे पता चलता है कि चमक कैसी है इसकी, नहीं, सिर्फ स्पर्श किया। तो हमारे संपर्क में अगर कोई आता है तो हमारे कौन से वाइब्रेशन सामने वाला फील करता है? कई बार हम बाहर से तो वाचा में हम बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि वाचा तो सबको दिखाई पड़ती है, तो चार लोगों के सामने तो हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो किसी के साथ हमारा भले संबंध अच्छा ना भी रहा होगा लेकिन चार लोगों के बीच में है तो हम उसके सामने बहुत अच्छी वाचा का उपयोग करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, बहुत अच्छी सुंदर गिफ्ट भी उनको दे देंगे क्योंकि चार लोग मुझे देख रहे हैं। क्योंकि कल अगर मैं किसी को कहूं कि देखा ना वो व्यक्ति, मैं हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे से चलती हूं लेकिन फिर भी वो पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसे चलते हैं। क्योंकि ये बोलना तो हम दूसरों के लिए इजी हो जाएगा ना, हम बोल सकते हैं ना, अगर कोई कहेगा कि आप उनके साथ ठीक नहीं चलते होगे ना, शायद इसलिए वो आपके साथ, हमारे साथ तो वो व्यक्ति ठीक है, तो हम उसका प्रूफ देने के लिए बाहरी दुनिया में ऐसा भी कर देते हैं। लेकिन बात आती है कि बाहर से तो बोला हमने ठीक, व्यवहार भी ठीक किया, लेकिन क्या उसके प्रति अंदर से विचार जो चल रहा था, विचार तो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन फैलता है, वाइब्रेशन तो हमारे शब्द से भी पहले पहुंच जाता है, तो हमारे कौन से वाइब्रेशन सामने वाले को कैच होते हैं? क्योंकि बाबा हमें कह रहे हैं अभी समय बहुत कम बच गया है और वाचा सुन सुन कर लोग थक भी गए हैं। हमने अभी कोरोना काल में भी बहुत क्लासेस सुन ली है जो कोरोना काल से पहले शायद न सुनी हो, क्योंकि हम अपने जिम्मेवारियों में जो थोड़ा समय नियम मर्यादाएं हैं कि सुबह मुरली क्लास सुननी चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए, नुमा शाम, वो सब हम करते थे। उसके बाद जिम्मेवारी हमारे पास थी तो हम उसमें लग जाते थे, लेकिन कोरोना काल में तो कोरोना ने सबको घर में पैक कर दिया तो खाली हो गए। फिर ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी आ गई, तो ऑनलाइन के माध्यम से हमने बहुत बहुत क्लासेस अटेंड कर ली है। बहुत बहुत बहनों के द्वारा मुरलियों का एक्सप्लेनेशन सुन लिया, वैसे शायद सिर्फ अपने सेंटर की टीचर का सुनते थे, लेकिन कोरोना काल में तो वैरायटी टीचर बहनों से सेम मुरली का वैरायटी एक्सप्लेनेशन हमने सुना, फिर वैरायटी ब्राह्मणों का वैरायटी अनुभव सुना, वैरायटी एक्टिविटीज अलग अलग कराने की क्रिएटिविटीज वो देखने को मिली। लेकिन परिवर्तन जो चाहिए शायद वो उतना अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मात्र सुनने से परिवर्तन नहीं होता है। सुनकर तो हम डायरिया सुनते हैं, लिखते हैं, डायरिया भर जाती है। सुनते हैं न भी लिखे, सुना है अंदर गया तो बुद्धि रूपी डायरी भर गई। लेकिन अगली स्टेप होती है सुनकर उसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, और उसी चेकिंग के लिए बाबा ने ये भट्टी का समय दिया। क्योंकि हम क्या करते हैं, सुनते जाते तिजोरी को भर लेते हैं, और इतना हम इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि शायद दूसरी बहन उसी टॉपिक को लेकर जब हमें एक्सप्लेन करेगी तो उसने जितने पॉइंट बताए होंगे हम कहेंगे उसने फलाना पॉइंट अभी तक नहीं बताया, हम उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, इतना हम सुन चुके हैं। लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल जीवन की, क्योंकि हम सबको पता है एग्जाम्स के दिन बहुत पास आ चुके हैं। क्या सबूत है उसका? क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का एक टाइमिंग होता है, एक लक्ष्य होता है, किस लक्ष्य से पढ़ रहे हो और ये लक्ष्य कब तक हासिल करना है। एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट जाता है, उसको पता है कि ये पढ़ाई पढ़ के मैं डॉक्टर बनूंगा और ये ड्यूरेशन है 4.5 साल 5.5 जो भी है उसको पता है। तो ऐसी हमारी भी जो पढ़ाई चल रही है इसका भी ड्यूरेशन है। क्या ड्यूरेशन है? बाबा ने कहा है संगम युग 100 साल का। कितने बाकी है, कितने साल निकल गए हैं? 86 निकल गए। एक वो प्रूफ। दूसरा प्रूफ कौन सा है कि एग्जाम पास में है? दूसरा प्रूफ एग्जाम पास का ये होता है कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, एग्जाम्स के दिनों में नया सिलेबस कभी नहीं पढ़ाया जाता है। साल के शुरुआत में ही बताया जाता है आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम ये रहेगा। और एग्जाम की कल डेट है एग्जाम की और आज तक पढ़ाए, ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जाम से कुछ दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है और कंप्लीट होने के बाद एग्जाम की डेट तक प्रिपरेशन के लिए लीव दे दी जाती है कि अभी आपको हम नया कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ा चुके हैं उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो शायद पढ़ाते समय उस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखा गया था लेकिन सुनाया सब गया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, उस जो पढ़ाया गया है उसको वैरायटी तरीकों से अपने आप में उसकी गुट्टी बना के पीना है खुद को, ताकि घुमा फिरा के भी अगर पूछा जाए तो मैं उसको आंसर कर सकूं, लिख सकूं, तब जाके हम पास हो सकते। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम में पेपर आया और अगर सिर्फ रटा हुआ था, समझा हुआ नहीं था तो प्रश्न तो घुमा के पूछ लिया, अब रटे हुए में तो घुमा हुआ समझ में ही नहीं आया, सर सर आउट ऑफ सिलेबस है हमारा क्वेश्चन पेपर, वो कौन कहेगा? जिस बच्चे ने समझा नहीं था, जिसने सिर्फ रट्टू तोता के रूप में पढ़ा था, लेकिन जिन्होंने समझ लिया था अच्छी से, बाहर आने के बाद वाह क्या इजी पेपर था। और वो दूसरा कहता है, इजी पेपर आउट ऑफ सिलेबस और इजी पेपर, किसने बोला आउट ऑफ सिलेबस, देख ये तो था ही नहीं, उसको बताए इसका मतलब ये होता है, तब उसको रियलाइजेशन होती है। तो हमारा भी सिलेबस पढ़ा के हो गया है, एग्जाम पास है, उसका बहुत बड़ा प्रूफ है, साकार मुरलियां भी रिवाइज हो रही है, अव्यक्त मुरलियां भी रिवाइज हो रही है, अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है। आपने देखा होगा इस पूरी भट्टी में चाहे जो भी क्लासेस आपको कराई गई उसमें टॉपिक के नाम पे कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो मैटर आया उस एक घंटे में वो वही आया जो पहले हम सुन चुके थे, वही आया ना, कि नया था, नया नहीं था, पर फिर से क्यों सुनाया गया उसको जब मालूम था तो, ताकि अब आपको भट्टी में बैठे हैं आप हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त है। हम पहले सिर्फ सुन के सिर्फ कापी में बंद करके रख दिया, सुन के बुद्धि रूपी तिजोरी में भर लिया, लेकिन बैठ कर चेकिंग नहीं की कि बाबा ये कह रहा है मेरे जीवन में ये बात अभी कितनी उतरी है, ये चेकिंग नहीं की। स्कूल के दिनों में हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे, कल ये पेपर है उसकी पढ़ाई करते थे, और घर में भाई या बहन जो होते थे उनको कहते थे आप मेरे से पूछो ना ये वाला प्रश्न, मेरा ये लेसन का मैंने पढ़ाई कर लिया, आप मेरे को पूछो ना। और जैसे ही उसने पूछा और अगर मैं आंसर देने में अटक गई तो मैं महसूस करती हूँ कि अभी तक अंदर मेरे वो बैठा नहीं, फिर से घुटते, फिर से घुटते, फिर से समझते हैं। और जिसका आंसर देके हो जाता है हाँ ये तो मेरे को अच्छी से आता है, तो रियलाइजेशन करने का टाइम होता है ना वो। तो ये भट्टी क्या है, रियलाइजेशन का टाइम। इसीलिए इस भट्टी में सिर्फ क्लासेस नहीं रखी हमने, हमने आपको एकांत का भी समय दिया है, सुबह में भी आधा घंटा दिया और शाम को अमृत वेला नुमा शाम, तो वैसे भी हम ब्राह्मण रूटीन में कर ही रहे थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों मिला था। पहले दिन बताया भी था कि जो सुनोगे अब उसको भेंट करना कि मेरे जीवन में ये कितना उतरा है। वो बच्चा भी रियलाइज करता है कि अच्छा ये अभी तक मेरे को याद नहीं, मुझे और पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कल आएगा तो मुझे, मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो हमें भी क्या करना था यहाँ पे, रियलाइजेशन चेकिंग, जैसे बच्चे चेकिंग करते पूछो ना मेरे से, हमें भी यहाँ पर उस एकांत के समय में बैठकर क्या करना था, चेकिंग करनी थी। और हमें विश्वास है सभी ने अपने अपने रीति से भरसक प्रयास किया होगा, और वो चेकिंग करने के बाद हमें रियलाइजेशन होती है, और रियलाइजेशन के बाद हमें परिवर्तन का संकल्प करना होता है कि अब मुझे इस परिवर्तन की जीवन में आवश्यकता है। मैं तो अंधेरे में था, मैं तो समझता था मुझे इतना आता है, मेरे जीवन में तो ये सब है, लेकिन चेक करने गया, क्लासेस इसलिए दी गई कि उस आधार से अपने भीतर में चेक करो, और चेक करने गया तो अभी उतना तो मेरा है नहीं जीवन में, तो मुझे रियलाइजेशन होती है और उसके अनुसार हम परिवर्तन करते हैं, और उस परिवर्तन के संकल्प को लेकर बाबा के साथ योग करने बैठते हैं। पर जब योग करने बैठते हैं ना तो फिर दूसरे दूसरे विचार आते हैं, लगता है कि सचमुच बाबा से कनेक्ट नहीं हो रहे, वही वही बातें जो जीवन में आई हुई होती है वो आ रही होती। जैसे आज भी भोग के समाचार में संदेश में यही था ना, प्रकृति की बातें, परिस्थितियों की बातें, स्व के संस्कार वाली बातें, हिसाब किताब जिनके साथ है वो बातें ही जीवन में बार बार आ रही है। तो जब हम एकांत में बैठते रियलाइजेशन भी कर लिया, चलो बाबा को अब योग लगाते, बार बार वो बातें हमारे आंखों के सामने मतलब अंतरचक्षु के सामने आती रहती है, आती रहती है। तो उसको कैसे हटाना होता है, उसको कैसे हटाएं? क्योंकि अगर वही बातें आएगी, मैं स्व की स्थिति में स्थित नहीं हो पाऊंगा तो मैं उससे भी कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। और सच्चा हीरा बनना माना स्वयं की स्थिति में स्थित होना है मुझे। मैं कौन हूं? सत चित आनंद हूं। तो मैं हमेशा आनंद में रहूं ना। सच्चित आनंद माना क्या? तीन शब्द है इस मंत्र में, सत चित आनंद। सत माना पहले दिन बताते हैं ना, सत माना सत्य। पर सत्य माना क्या? जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व बना रहे, जो कल भी था, जो आज भी है और जो आने वाले कल में भी रहेगा। बीते हुए कल में भी जिसका अस्तित्व था, आज भी जिसका अस्तित्व है और आने वाले कल में भी जिसका अस्तित्व बना रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। तो आत्मा क्या है? सत्य है। शरीर क्या है? असत्य। वो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। कल नहीं था ना, ये जिस दिन बच्चा जन्म हुआ, कहा कि फलाना बच्चा, नया बच्चा जन्म, उस दिन से अस्तित्व में आया ना ये शरीर। उसके पहले तो था ही नहीं वो शरीर, है ना? लेकिन और एक दिन जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो तो चल गया, वो तो चल बसा। तो वर्तमान में है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, यह असत्य हो गया। शरीर क्या हो गया? असत्य हो गया। और आत्मा क्या हो गई? सत्य। दूसरा शब्द क्या है उसमें? चित्त। चित्त माना क्या? चित्त माना क्या? चलो आत्मा सत्य है, ठीक है, पर सत्य किस बात में है? उसके पास सत्य ज्ञान है, क्योंकि चैतन्य भी तो है ना आत्मा। आत्मा सत्य के साथ साथ चित्त माना चैतन्य भी है, अर्थात चैतन्य माना उसको चैतन्य का भी ज्ञान है। चैतन्य ही सत्य रहता है, जो चैतन्य है वो सत्य रहता है। उस चैतन्य का सत्य ज्ञान है और पर सत्स्व का और पर का भी, कि ये शरीर का भी ज्ञान है, आत्मा को ही ना, शरीर को थोड़ी है ज्ञान कि मैं शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा बैठी है। शरीर को ही क्या है ज्ञान? किसको ज्ञान है? आत्मा को है। स्वयं का भी ज्ञान है और पर का भी ज्ञान है। और ये दोनों ज्ञान होते हुए भी आत्मा टिकती किस में है? अपने सत्य स्वरूप में। तब उसको आनंद की अनुभूति होती है। इसको कहते सत चित आनंद, कि आत्मा जो चैतन्य है, जो सत्य है, जिसे स्वयं का ज्ञान है, जिसे पर का भी ज्ञान है, लेकिन अपने आप को स्थित करती है अपने सत्य स्वरूप में, तब वो आनंद की अनुभूति में रहती है। ये फार्मूला है कि उसको मिलेगी ही वो अनुभूति। लेकिन अगर चैतन्य आत्मा स्वयं के सत्य स्वरूप के बदले पर के स्वरूप में टिकती है तो फिर आनंद की अधिकारी नहीं। क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही? सत चित आनंद। अगर सत्य के सामने अ आ गया असत्य, तो आनंद के सामने भी अ, माना उसका अभाव। सत्यता का अभाव तो आनंद का भी अभाव। सत्यता की उपस्थिति है तो आनंद की भी उपस्थिति है। तो जब हम अंदर जाते हैं, जैसे का अंतर्मुखी होना है एकांत में बैठकर, पहले दिन बताया था ना, बच्चे क्या करते हैं, गैलरी में खड़े हो जाते हैं और बाहर की दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं और घर वालों को पीट। तो अंदर घर में जो आवाज दे रहे हैं आपको सुनाई नहीं पड़ती, ना आप उनको देख सकते, ना उनके साथ बातचीत। जब तक कि यू टर्न लेके बच्चा फेस घर की तरफ करे और पीठ बाहर की दुनिया की तरफ करे, तब जाके अंदर के सदस्यों को वो देख सकता है, सुन सकता है, उनके साथ बोल सकता है। तो जो एकांत का समय दिया गया था वो इसलिए था, यू टर्न ले लो, क्योंकि यू टर्न लिए बिना अंदर में टर्न नहीं होंगे हम। टर्न माना परिवर्तन। यू टर्न लेंगे तो ही टर्न करने की रियलाइजेशन, क्योंकि पहले तो रियलाइजेशन चाहिए ना कि क्या कमी है मेरे में अभी। तो यू टर्न लेंगे, चेकिंग होगी, रियलाइजेशन करेंगे, टर्न माना क्या परिवर्तन लाना है वो सामने नजर में आएगा। वो नजर आ भी गया, अब मैं योग कर रहा हूं लेकिन वही दुनियादारी वाली बातें जो चार बताए, हिसाब किताब फलाने के साथ है, परिस्थिति है, ये वो सब बातें सामने आ रही है, तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए दूसरा तरीका होता है कि उससे अपने आप को अलग करें। जैसे हम पहले दिन लेसन देते हैं कि हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं और ये दिखाई देता है, इसकी प्रतिबिंब वहां पे दिखता है, तो जब ज्ञान नहीं था तो हम बोलते थे ये मैं हूं, है ना, और हाथ में एप्पल लिया, चाकू लिया, कट किया, उंगली कट गई, तब क्या बोला, मैं उंगली कटी या मेरी उंगली कटी, मेरी उंगली। अभी अभी दर्पण के सामने मैं बोला था और अभी अभी इसको मैंने मेरा बोल दिया। ये उदाहरण देके हम क्या करते हैं, सबको समझाते हैं कि ये अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, ऐसा समझाते हैं ना। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, जब हम भीतर में जाएं तो हमको अलग करना है। जैसे ये सिखाया गया कि देह से अलग अपने आप को आत्मा समझो, ऐसे भीतर जाने के बाद जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो दिखने के रूप में ही होती है ना, हमारे सामने जो परिस्थितियां, बातें, जो भी हमारे जीवन में चल रहा होता है वो हमको दिख रहा होता है ना, तो हम क्या करें, वहां पर भी दो में बांट दें। यहां तो मैंने आत्मा और देह को अलग किया था, वहां किस में अलग बांटू मैं? वहां जो दिख रहा है, दिखना चाहिए था आत्मा, दिखना चाहिए था बाबा, पर दिख क्या रहा है, मेरे जीवन की परिस्थितियां, मेरे जीवन में आने वाले लोग, वही दिख रहा होता है। तो मुझे क्या करना होता है, अंदर जाने के बाद जो दिख रहा है उससे अपने आप को अलग करना होता है। जैसे आप हैं, आप मेरे लिए दृश्य है और मैं देखने वाली हूं, मैं देख रही हूं ना आपको, मैं दर्शक, आप दृश्य, अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? तो दृश्य को अच्छी से देख सके उसके लिए दर्शक को थोड़ी उससे दूरी बनानी पड़ती है। और आजकल तो आप देखो ड्रोन यूज किए जाते हैं, किसी जगह का सीन पूरा होलिस्टिकली देख सके, संपूर्ण रीति देख सके, समग्र रूप से देख सके, तो ऐसे सामने वाला कैमरा तो सिर्फ इतना ही आ रहा है ना, लेकिन ड्रोन तो ऊपर जाता है और ऊपर से पूरा दृश्य लेता है, तो उसको सब कुछ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य, दर्शक और दृश्य में दूरी जब तक नहीं होगी, दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो अंदर जाके क्या करना है, अपने आप को कहना है, देखने वाली कौन है, पहले दिन के लेसन में क्या बताया था, ये आंख नहीं देखती, कौन देखती है? तो अंदर भी जाने के बाद जो कुछ सामने आ रहा है अपने आप से वार्तालाप करना है, ये जो दिख रहा है ना, ये तो दृश्य है, और जो देख रही है ना, वो दृष्टा आत्मा है। जो देख रही है वो दृष्टा आत्मा है, और जो ये दिख रहा है मेरे जीवन की बातें, जो मेरे सामने रील के समान चल रही है, ये दृश्य है। और ऐसा अपने आप को बोल के, दृष्टा बन के सिर्फ उस दृश्य को देखो, इंटरफेयर नहीं करो। जैसे सड़क पे कोई दुर्घटना घट जाती है तो क्या करते हैं, जिन दो के बीच में दुर्घटना घटी वो तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, और चलो केस बन गया, वो अपनी कोर्ट में पहुंच गए, तो कोर्ट में न्यायालय में जज भी क्या कहता है, कोई साक्ष्य है क्या, कोई विटनेस है क्या, और विटनेस माना ही वो दुर्घटना वाले स्थान पर ही था, पर इन्वॉल्व नहीं हुआ था उसमें, लेकिन क्या कर रहा था, दूर से देख रहा था, उसने समग्र रीति से देखा, तो दिखाई पड़ा कि किसकी गलती कहाँ हुई है। या क्रिकेट मैच के मैदान में भी देखो, जब कोई आउट होता है और अगर कोई डाउट करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो वो जो क्योंकि कैमरा तो ऑन रहते हैं, रिवाइंड करते हैं, उसका स्लो मोशन में दिखाते हैं, स्लो मोशन में दिखाते तो पता चलता है, भले तुम नहीं भी मानो गलती, पर देखो यहाँ दिख रही है किसकी गलती थी। तो मोशन क्या हो जाती है, स्लो करते हैं तो पूरा क्लियर आता है। ऐसे क्या करना है, अंदर में जाकर के उस दृश्य के प्रति, जैसे कि मैं विटनेस हूं, मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूं, हम बह जाते हैं। जैसे फिल्म के पर्दे पर क्या होता है, फिल्म चल रही है, कोई दृश्य आ रहा है, और उसमें कोई एक दृश्य ऐसा आया जो मेरे जीवन में भी, मेरे घर में भी ऐसा ही कोई सदस्य है जो मुझे तंग करता है, तो हम तुरंत क्या बोलते, ये बिल्कुल उसके जैसे मेरे घर में, वो भी मेरे को ऐसे तंग करता है, हम क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। और वैसी वाली भावना, हाँ, वो नफरत या गुस्से वाली भाव, अभी तक मैं क्या कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, लेकिन अभी सिर्फ सीन में इन्वॉल्व हुई, जैसे इस सीन में किसी ने किसको सताया है, ऐसे ही मेरे जीवन में किसी ने सताया है, वो याद करके मैं गुस्से में आ गई, अंदर जो मेरी शांति थी उसको भंग कर दी, गर्म हो गई, नफरत आ गई उसके प्रति, फिर से उसके प्रति रिवेंज लेने की भावना फिर से दृढ़ हो गई। ये सब होता है या नहीं होता है, इन्वॉल्व होते हैं तो हमें भी क्या करना, हम उसके साथ बह जाते हैं, अंदर में जो बातें हमको दिखती है एकांत में बैठने से, हम बह जाते हैं। बहना नहीं है, एक दृष्टा बनकर देख रही हूं। और हमें ये पता है, जब हम दृश्य देखते हैं ना, तो मैं यहाँ पे आप सब बैठे हैं, ये दृश्य के रूप में, मैं दर्शक के रूप में आपको देख रही हूं, मेरे पास आंख है, सलामत है, मैं देख रही हूं आपको, लेकिन इतना ही काफी थोड़ी है कि मेरे पास आंख हो, सलामत हो, खुली हो, नहीं। अगर यहाँ पे घना अंधकार हो जाए, मेरी आंखें सलामत है, खुली है, दृश्य आप भी बैठे हैं, दिखाई पड़ोगे, तो देखने के लिए लाइट भी जरूरी चाहिए होती है। तो अंदर जो मुझे दृश्य दिख रहा है, मुझे आत्मा दृष्टा को, किसकी लाइट में दिख रहा है, आत्म ज्योति की लाइट में दिख रहा है। चैतन्य न हो, जैसे कहा आत्मा निकल जाए, आंख देख सकेगी नहीं, ऐसे ही आत्मा निकल जाए, मन सोच सकेगा नहीं ना, तो ऐसे अंदर में भी मुझे सोचना है कि मैं दृष्टा आत्म ज्योति के, अर्थात आत्म ज्ञान मिला है ना मुझे, तो ज्ञान क्या मिला है, जो बदलता है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, पहले ही देख लिया हमने, ये बदलता है ना शरीर, और आत्मा नहीं, वो कायम रहती है। तो ये तो दृश्य आ रहा है, जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, तो दृश्य क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन देखने वाली दृष्टा कौन है, एक ही है, देखने वाली दृष्टा एक ही है, और देखने वाली दृष्टा एक है, उधर अनेक है, ये कायम है, वो बदल रहा है। तो अपने आप से ये बातें करनी है, जो ये कायम ही नहीं है, जो बदलता है, ये मैं थोड़ी हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और मैं उसको देख देख के क्या कर रही हूँ, जितना आप देखेंगे जिस चीज को, वो अपने आप गिरने लगता है। अगर बिना देखे उसके साथ बहते तो बहते रहो, सारी जिंदगी वही चल रही है, वही चल रहा है। जीवन में एक घटना घटी नहीं, उठते बैठते रूटीन काम करते करते सिर्फ वही घूम रहा है अंदर में, वही घूम रहा है। फिर चाहे मेडिटेशन करने भी बैठो, जरा एकांत मिला नहीं, कोशिश की याद करने की, लेकिन फिर वही चल रहा है, क्योंकि बह जाते हैं, अलग अपने आप को कभी करते नहीं है। तो ये वहां पे वार्तालाप फिर करना है कि जो बदलता है वो सत्य नहीं होता है, जो बदलता है वो सदा टिकता नहीं। तो जो सदा टिकना नहीं है, उसके पीछे मैं क्यों लगी हुई हूं इतना? मैं जो कायम हूं, मुझे अपनी तरफ देखना है। तो जब ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे और उसको देखेंगे कंटिन्यूअस, तो वो जो भी हमारे भीतर चल रहा है आएगा गिरेगा, आएगा गिरेगा। और एक समय आएगा पर्दे पे आने वाले दृश्य, मतलब जो कैसेट थी 3 घंटे की रील थी, खत्म हो गई देख के, पर्दा खाली हो गया, तो आत्मा की सिर्फ लाइट ही पड़ रही और कुछ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा? लाइट ही लाइट, मैं आत्म ज्योति। और जब मैं उस स्थिति में आ गई, मेरे परमात्मा परम ज्योति, उसके साथ कनेक्ट हो जाना बहुत बहुत इजी हो जाएगा। और जब उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी एनर्जी मेरे भीतर भरना आरंभ हो जाएगी। और जब उसकी एनर्जी मेरे भीतर भरना आरंभ हो जाएगी, बैटरी चार्ज होगी। मोबाइल में भी जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो गर्म होती है, मोबाइल में भी जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। नहीं, आप बात कर रहे हो और बैटरी डिस्चार्ज होने आ रही, लेकिन आप अपने धुन में हो, तो जहां आपने पकड़ा हुआ है फोन, बैटरी वाली जगह पर आपको गर्म महसूस होगा, और बात तो फिर भी चालू रखी है, तो क्या होगा कि सिग्नल ठीक से कैच नहीं होगा। तो मैं जो बोल रही हूं पूरा, उसको सामने वाले को पूरा ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा, और न ही सामने वाले को मेरा ठीक से सुनाई पड़ेगा, ना उसका, मन एक दूसरे को कटा कटा सुनाई देगा। और ऐसे कट कट के हम डिस्कनेक्ट हो गए, और डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि अधूरी अधूरी जानकारी मिली, तो अधूरी अधूरी जानकारी से एक दूसरे के प्रति गलत फहमी पैदा हो गई, होता है ना, गलत फहमी, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। यही होता है लाइफ में, कुछ बातें आती हैं, हम गर्म हो जाते हैं। हर दो व्यक्ति के बीच एक कॉमन डायलॉग जो आजकल होता है, आप मुझे समझते नहीं हो, वो कहता आप मुझे नहीं समझते हो, वो कहता आप मुझे नहीं समझ, वो कहता आप मुझे नहीं समझते हो, ये कहते हैं। और अगर ये थोड़ा लंबा समय चला तो 63 का आंकड़ा 36 में हो जाता है। ऐसे रहते थे पहले और अब ऐसे हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कब होता है? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। हम अपने आप को चेक कर लें, सच्चे हीरे गरम हो जाते हैं। जीवन में गलत फहमियां, बात बात में हम यही बोलते हैं, आप मुझे नहीं समझते हो, आप मुझे नहीं समझते हो, बार बार गलत गरम हो जाते हैं। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हार्मफुल रेडिएशन बहुत निकलता है, और फिर इसलिए अंधाधुंध बिना सोचे कि इस कर्म का क्या रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं हम उसके लिए क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या अकेले में बड़बड़ भी कर लेते हैं और क्या क्या उसके साथ अकेले में व्यवहार भी कर लेते हैं, चार लोगों के सामने शायद न भी करें। और ऐसे कार्मिक अकाउंट को हम क्या करते हैं, उस गुत्थी को सुलझाने के बजाय और उलझाते जाते हैं, उलझाते जाते हैं। और फिर तो हम कहते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, हमारे जीवन में ऐसा होगा तो गर्म होना तो स्वाभाविक है, उनके प्रति निगेटिव सोचना तो स्वाभाविक है, उनके साथ कट रहना तो स्वाभाविक है, उसको जस्टिफाई कर देते हैं, स्वाभाविक है। परंतु नहीं, तो ये क्या हो रहा है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर हम सत्य स्वरूप से विस्मृत होके वही बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन में जीते हैं और आत्मा के ऊपर लेप लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जा रही चढ़ती जा रही चढ़ती जा रही। यही तो जब हम एकांत में बैठते हैं वो लेयर्स दिखती है हमको, जो आत्मा की ज्योति दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। उदाहरण के लिए जैसे एक बल्ब है, बल्ब में एक फिलामेंट होता है, जब स्विच ऑन करते हैं तो फिलामेंट प्रकाशित होता है, लेकिन बल्ब का फिलामेंट कांच से सुरक्षित है, कांच ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो जब बल्ब जलाया, स्विच ऑन किया, फिलामेंट प्रकाशित हुआ, प्रकाश का स्वभाव है ट्रैवल करना, गमन करना, वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में कांच आया है, लेकिन कांच पारदर्शी है, उसको भेद कर बाहर आ गया और हमने कहा कि प्रकाश हो गया, बल्ब जलाया तो, है ना। लेकिन अगर बल्ब के ऊपर रोज धूल मिट्टी चढ़ रही है और हम उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, और खास करके किचन के उस हिस्से में लगाया हुआ है जहाँ खूब भजिया तलते हैं, खूब छौंक लगते हैं, खूब सीटियां बजती है, उसके ऊपर क्या चढ़ते जाती है, फिर क्या होता है, धीरे 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 वो इतना वो उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है, लाइट तो बटन तो चालू किया पर लाइट ही नहीं आ रही है, होता है ना ऐसा। अरे दूसरे कमरे की तो लाइट चालू है, इसको क्या हो गया, नजर डालते हाथ लगा, ये छीछी कितना गंदा है, कपड़ा तो दो पोछो तो सही, और पोछा तो लाइट तो निकल के आ गई, लाइट तो निकल के आ गई। ऐसे ही जो कहा ना, ये लेयर्स जो हम निगेटिव सोचते हैं, जो हम बॉडी कॉन्शियस में आकर करते हैं, आत्मा के ऊपर ऑलरेडी 63 बर्थ्स की चढ़ी हुई है, और ज्ञान में आने के बाद भी अगर अटेंशन नहीं रखते हैं सोल कॉन्शियस का तो और चढ़ रही है। तो उस बल्ब के ऊपर जैसे कि ये लेयर्स चढ़ गई है तो प्रकाश बाहर से कहां दिखेगा, नहीं दिखेगा, प्रकाश नहीं आएगा। तो उसी प्रकाश में तो सब गुण भरे हुए थे, जैसे सूर्य के प्रकाश में तो गर्मी भरी थी तो गर्मी आ रही है, चांद के प्रकाश में शीतलता भरी है तो शीतलता है, आत्म ज्योति के प्रकाश में ही तो सुख शांति प्रेम आनंद भरा हुआ है, अब उसका रास्ता ही हमने ब्लॉक कर दिया तो आएगी तो कैसी आएगी। अब वो जब बाहर ही नहीं आ रही है तो उधर कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि उसको कनेक्ट होने के लिए दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम चाहिए। तो थोड़ा बहुत जब प्रयास करते हैं तो थोड़ी बहुत लेयर क्या हो जाती है, उसको खरोंच लग जाती है और हम उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेशन को बरकरार रखा तो वहां से आने वाली लाइट फिर इसको जलाना शुरू करती है, जिसको कहा विकर्मों को भस्म करते हैं। तो लेयर्स को उतारना हमारा पहला काम है और इसके लिए रियलाइजेशन। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना के पूरा करती हूँ। एक राजा था, सुख सुविधा के साधन बहुत अपार अपरंपार, लेकिन आंतरिक सुख की उतनी ही कमी। जितना ही बाहर में सुख सुविधाएं से भरपूर है, उतना ही अंदर का सुख गायब है। और कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन में भीतर में आपकी स्थिति क्या है वो चेहरा बोल देता है। तो एक बार एक फकीर का राजा के पास आना हुआ और उनका चेहरा देखकर कहा कि राजन आप सुखी नहीं लगते हो, और वो सचमुच था भी नहीं। तो उसने कहा जी फकीर जी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मैंने सारे उपाय कर डाले हैं, लेकिन पता नहीं मेरा ये अंदर का सुख कहाँ चला गया और कैसे आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फकीर कहता है एकमात्र उपाय है कि उसी से आपका जो सुख का अभाव है या आंतरिक सुखी है वो आ सकती है या सुख का अभाव जा सकता है। कहा कहो ना कौन सा वो उपाय है। कहता है किसी सुखी आदमी के कमीज की आपको जरूरत है। कहा बस इतना सहज उपाय है। कहा हाँ बस इतना ही सहज उपाय है। राजा तो था ही, अपने सैनिकों को भेज दिया पूरे राज्य में, जाओ अलग अलग स्थानों पर और ढूंढ के लाओ कि मेरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति हो तो उसकी कमीज लेकर आ जाओ। अब सिपाही अलग अलग डायरेक्शन में गए और आखिरकार समाचार राजा को मिला कि राजन कोई भी एक व्यक्ति सुखी नहीं मिल रहा, एक सुख है तो दूसरा नहीं है। कोई निर्धनता के कारण दुखी है तो किसी के पास धन बहुत है तो और धन के पीछे लालायित होकर चिंताओं में है, तो किसी के पास पत्नी होने का गम है कि ये जिंदा क्यों है, किसी की मर गई क्योंकि सताती होगी, किसी की मर गई है तो दुखी है, किसी के पास बच्चे है तो दुखी है, किसी के पास बच्चे नहीं है तो दुखी है तो भी दुखी। तो राजन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है हमें, उनको रिपोर्टिंग करनी है ना राजा को। फिर ऐसे करते करते आखिर एक जंगल के अंदर जब गए, उनको दूर से दिखाई पड़ गया कि अंदर कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। चलते हैं उसके पास, उसको भी पूछ लेते हैं। तो जाके देखा उसकी बैलगाड़ी वहां खड़ी है और वो व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है और भगवान से कहता है, हे भगवान, जितनी सुंदर सुखी स्थिति तूने मुझे प्रदान की है, ऐसा ही सुख दुनिया के हर शख्स को प्राप्त हो जाए, मेरी यही सबके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। और इतने में वो सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कि भाई साहब आप बहुत सुखी दिखाई दे रहे हैं, आपके शब्दों जो मुख से निकले वो भी इसी बात का परिचय देते हैं, आप सचमुच में सुखी हैं। कहा हाँ भाई मैं सुखी हूँ, तभी तो दूसरों के लिए कामना कर रहा हूँ कि मैं जैसा सुखी हूँ सबको ऐसा सुख मिल जाए। तो दो तीन बार कन्फर्मेशन, क्योंकि उनको कमीज चाहिए होती है ना, तो दो तीन बार पूछ करके कन्फर्मेशन कहते आप सचमुच सुखी है ना भाई साहब। कहता हाँ मैं सचमुच सुखी हूँ। फिर कहते लेकिन भाई साहब आपके पास तो कमीज नहीं, क्योंकि वो बिना कमीज पहने हुए लेटा हुआ रहता है। तो उसने कहा सुख के लिए कमीज की थोड़ी आवश्यकता होती है। कहा नहीं, लेकिन हमारे राजन को तो ऐसे ही कहा गया है कि किसी सुखी व्यक्ति की कमीज लाके दीजिए तो हमारे राजन जो सुखी नहीं है उनको भी सुख मिल जाएगा। तो उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी राजा के पास कि भाई एक व्यक्ति हमें मिला है परंतु उसके पास तो कमीज ही नहीं, तुम लाए तो कैसे लाए। राजा ने कहा उसी व्यक्ति को मेरे पास लेके आ जाओ। तो ये व्यक्ति तैयार नहीं, इंकार कर दिया कि मुझे राजा की जरूरत नहीं है, राजा को मेरी जरूरत है, तो वो भले मेरे पास है वेलकम, पर मुझे कोई उसकी जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर रिपोर्टिंग किया कि राजन वो तो ऐसे कह रहे हैं। तो फिर दूसरी बार में राजा अपना लश्कर लेकर आके पहुंचा और फिर संदेशा भिजवाया कि राजन आए हैं, तो भी ये चलने को तैयार नहीं। नहीं, राजा को जरूरत है, राजा आए मैं क्यों जाऊं। तो ये राजा का दूसरा प्रयास कि जिसमें वो नहीं गया। फिर राजा ने तीसरा प्रयास क्या किया, खुद अपने रथ से उतर के वो लश्कर को साइड में रख करके ये व्यक्ति जहाँ लेटा हुआ है बैठा हुआ है उसके पास आया और कहा कि मुझे आपसे मिलने की इच्छा है, इसलिए मिलने आया हूँ और कुछ मुझे पूछना है आपसे। तो उसने स्वीकृति दे दी, मतलब मिल गया, संवाद चालू हो गया। कहिए क्या पूछना है। कहा मुझे एक राज बताइए कि जिसके पास एक भी कमीज नहीं वो इतना सुखी है, और मैं जिसके पास सैकड़ों तो क्या हजारों कमीजें हैं पहनने के लिए, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं, जरा इस पर प्रकाश डालिए। कहते राजन, सुखी होने के लिए कमीजों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कमीजें उतार देनी होती है, इसीलिए तो मैंने उतार दी है। कभी समझा नहीं ये तो, क्योंकि जो सूक्ष्म होता है उसका स्थूल का उदाहरण देके समझाना होता है। उसने कहा राजन, आत्मा स्वयं में प्रकाशित है, आत्मा स्वयं में शांत और शीतल है, स्वयं में सुखी है और आनंद है, शक्ति से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, पर हमने ये कर्म रूपी लेयर्स उसके ऊपर, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में हमने कर्म किए हैं उसकी लेयर्स आत्मा के ऊपर चढ़ गई हैं, यही कमीजें हैं, इन्हीं कमीजों को जब तक उतार कर नहीं फेंकोगे तब तक आत्मा का अंदर का जो सुख शांति है उसको बाहर आने का मार्ग नहीं मिलेगा, और तब तक आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। राजा इस बात से समझ गया, भीतर कार्य करने की आवश्यकता है। भौतिक जगत में तो बाहर से जमा करना पड़ता है जीवन को सुखी बनाने के लिए, लेकिन आंतरिक जगत में आत्मा का सुख, आत्मा की सच्ची शांति आनंद प्राप्त करने के लिए आत्मा के ऊपर जो चढ़ा हुआ है उसको उतार के फेंकना होता है। वो तो अपने आप में शांत है, प्रेम से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। तो ये संकल्प अभी इस भट्टी से करके जाना है कि कई बार हम एकांत में इसलिए नहीं बैठते हैं, अंदर एकांत में बैठते वही बातें सामने आती हैं, परंतु जब तक उतारोगे नहीं, जब तक दृश्य को, रील को खत्म नहीं करोगे, पर्दा खाली कहां से मिलेगा आपको, कब वो फिर रोशनी दिखेगी आपको, कब कनेक्शन होगा। तो इस भट्टी से एक संकल्प लेके जाना कि हमें अभी एक नई भट्टी फिर से शुरू करनी है, अपने अपने स्थानों पर लौटकर जितनी भी कमीजें पहनी हुई है वो सारी उतार देनी है। सच्चा हीरा आत्मा तो अपने आप में सच्चा है, वो चमक उठेगा, और उस चमक में, उस स्थिति में रहकर जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने आप को शांत और शीतल बनाकर रख सकेंगे, चाहे फिर जीवन में सफलताएं आए चाहे जीवन में विफलताएं आए, लेकिन हमारे से सदा क्या वाइब्रेट होगा, सुख और शांति और प्रेम की वाइब्रेशन। तो हम स्वयं भी उस स्थिति में रहेंगे और हमारे संपर्क संबंध में जो आएगा, हमारे वातावरण में जो आएगा, उसको भी उसकी अनुभूति होती रहेगी। और इस तरीके से जो भारत कौड़ी तुल्य बन गया है उसको हीरे जैसा बनाने में सफलता मिलेगी। ओम शांति।
जगत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने।
समर्थ बना दिया,
हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
ओम शांति। इंदिरा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचारों से आप हम सभी को सत्यता की ओर लेकर भी गए और फिर उसके स्वरूप में भी शायद टिका दिया। आपने सभी स्पीकर्स का आभार किया, हम सभी की तरफ से आपका आभार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परिचय जानना चाहेंगे, अपना परिचय।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे ज्ञान मिला और 1998 में समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। और ये यात्रा आरंभ हुई हेडक्वार्टर से ही, ज्ञान सर्वर के स्पार्क ऑफिस से। 5 वर्ष हम वहां रहे और उस 5 वर्ष के दौरान एक पुस्तक कंपोज करने के निमित्त बने, जिस पुस्तक का नाम है, इतनी मोटी है, मनोबल एवं मनसा सेवा, जो लिटरेचर में सेल होती है। वो पुस्तक लिखने के लिए बाबा ने इसको निमित्त बनाया। और उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का सौभाग्य मिला। और चूंकि इस पार्क से जुड़े थे, मतलब रमेश भाई और उषा दीदी से जुड़े थे, तो उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूंकि शुरुआत तो हेडक्वार्टर से हुई थी तो गामदेवी के बाद पुनः हेडक्वार्टर में अवसर मिला। तो वर्ष 2009 से इस पांडव भवन की धरनी पर शिलू बहन के साथ ग्लोबल ऑफिस में बैठकर उनकी जो सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, इतना अच्छा आपने बुक आपने जो कंपाइल किया है वो सभी सेंटरों में है और वो एक रेफरेंस है हमारे लिए मनसा सेवा करने के लिए। थैंक यू। ओम शांति।